何かな。
ओम शांति। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। सदा अमृत वेले स्वयं को तीन बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तो तिलक का बहुत महत्व होता है। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है। और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे। और सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है, क्योंकि तिलक स्मृति की निशानी है। तो ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है ना, क्योंकि तिलक स्मृति की निशानी है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने तीन बिंदियों का तिलक अर्थात तीन स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना, तो मैं आत्मा हूं, यह स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत गया है, जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है। तो बीत जाता है, इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो यह तीनों स्मृति सदा है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी नीचे, तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थिति आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना, क्या स्मृति रहती है, होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं ये होना है तो विचलित नहीं होंगे। जब नॉलेज है कि होना ही है तो खेल समझ कर देखेंगे। तूफान नहीं लेकिन खेल है। नाटक में भी तूफान बाढ़ सब देखते हैं ना, लेकिन विचलित होते क्या? क्योंकि समझते हैं कि यह ड्रामा है। तो अचल हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो, क्यों, क्या होता है, क्या होगा, कैसे होगा, यह आता है। जब ड्रामा का ज्ञान है तो अचल अडोल है। ड्रामा का ज्ञान नहीं तो हलचल है। तो सभी सदा अचल हो, अभी नहीं लेकिन सदा। सदा शब्द नहीं भूलना, सदा माना अविनाशी। सदा काल वाले व कभी कभी वाले, माताओं को कभी थोड़ा थोड़ा मोह नहीं आता, थोड़ा थोड़ा मेरापन नहीं आता। जहां मेरापन होगा वहां हलचल होगी। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। वह है मेरा बाबा, हद का मेरा मेरा बहुत है, तो हद का मेरापन नहीं है। पांडव क्या समझते हैं, मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, कुछ नहीं आता। सब तेरा कर दिया कि थोड़ा किनारे रखा है, अगर थोड़ा भी किनारे रखा तो जो मंजिल का किनारा है वह नहीं मिलेगा। तो मेरा मेरा समाप्त। सदा सुनती के तिलकधारी आत्माएं, तो जरा तो जहां स्मृति है वहां समर्थि है, स्मृति नहीं तो समर्थि भी नहीं। तो सभी संतुष्ट हो या कोई असंतुष्टता है, अनेक जन्म असंतुष्ट रहे अब भी असंतुष्ट रहे तो क्या कहेंगे, इसलिए सदा संतुष्ट। अच्छा तो बाबा कहते हैं
माइक रख लो,
तो बाबा ने कहा कि सदा संतुष्ट स्मृति का ही खेल है। जब हम ज्ञान में आए तो बाबा ने हमको क्या कहा, कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है। तो जितना ये स्मृति की स्थिति श्रेष्ठ रही उतना ही वो ज्ञान मार्ग में नंबर वन जा सकते हैं। आज दादिया देखो कितना साल हो गया फिर भी ऐसे सुनाती हैं 80 साल की बात जैसे कल की बात है। तो ऐसी हमारी स्मृति, स्मृति में भी क्या रहे, आत्मिक स्मृति। तो जितनी आत्मिक स्मृति हमारी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, आज बाबा ने कहा ना कि आत्मा की स्मृति, बाबा की स्मृति जितनी आएगी जितनी रहेगी उतनी लाइट बढ़ती जाएगी। तो हमारे जीवन का जो अनुभव है, हमारे जीवन को जो आगे बढ़ाने का जो एक ही साधन है वो है स्मृति। तो जितनी स्मृति श्रेष्ठ है उतनी ही हमें सफलता मिलती है। अगर स्मृति में थोड़ा भी व्यर्थ आता है तो क्या होगा, सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता का आधार स्मृति है। तो जितनी श्रेष्ठ स्मृति जितनी ही महान स्मृति, स्मृति के लिए बाबा ने हमें क्या क्या दिया है, अथाह खजाना दिया है, ज्ञान का खजाना, सोमान का खजाना। तो एक ही सोमान हम रहे, सोमान में स्थित रहे, रोज रोज सारे दिन में अभ्यास करते रहे तो विशेष उसका अनुभव रहता है या तो हमको सफलता मिलती है। तो आत्मिक स्मृति का जो बाबा ने कहा कि तीन बिंदी लगाओ, तो तीन बिंदियों का जो महत्व है कि हम कौन है, तो जितना हमें आत्मिक स्मृति रहती है उतना ही हमें बाप की स्मृति नेचुरल रहती है। आत्मस्मृति जब भूल जाती है तो बाबा की स्मृति भी कम हो जाती है। तो आत्मिक स्मृति में रहने के लिए हमें क्या अभ्यास करना चाहिए, ब्रह्मा बाबा ने भी पहले पहले यही अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूं, यशोदा भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। बाबा ने आत्मिक स्मृति के लिए कई किताबें भर दी, लिख लिया, दीवालों पर भी लिख दिया, और सबको जो भी आते थे उसको बाबा एक चित्र बनाते थे शरीर का, उसमें आत्मा बताते थे। और ऐसा बाबा का आत्मा का अभ्यास पक्का हो गया था तो जिसको भी बाबा आत्मा का ज्ञान देते थे तो उसको पक्का हो जाता था। उस समय ये परमात्मा है, ये सृष्टि चक्र है, वो सब ज्ञान नहीं था इतना, लेकिन आत्मा का ज्ञान था। तो आत्मिक स्थिति थी। और सभी को जैसे एक श्रेष्ठ परिवार है, देवी परिवार है, और हमारा ये ईश्वरी परिवार महान परिवार है, बस यही स्मृति रहती थी, दूसरी कोई स्मृति नहीं। और भविष्य की स्मृति, तो भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं वो स्मृति। बाबा उस समय कहते थे कि मैं आप पुरुष है न स्त्री है, क्या है? विष्णु चतुर्भुज, और चतुर्भुज विष्णु की स्मृति रहती थी सबको। अब सबको नशा रहता था कि हम कौन है, शिव शक्ति है, पांडव सेना है। जब यहाँ भाइयों का क्लास होता था तो कहते थे कि भाई आज गोपो का क्लास है, तो वही याद रहता था कि हम वही गोपी वल्लभ की गोप गोपिया है। और बहनों का क्लास होता था तो बोल रहे आज शक्तियों का क्लास है। तो कितना जैसे श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ स्मृति रही कि भाई गोपो का क्लास, माना जब ये भाई है, छोटे है, बड़े है, कुमार है, वो नहीं, बस हम सब गोपी वल्लभ के बाबा के गोप है, वो हम ही श्री कृष्ण के साथ कोई गोप गोपिया थे, वो स्मृति आ जाती थी। तो
लेकिन चित्र में तो गोप का चित्र नहीं दिखाया, चित्र में तो गोप का चित्र नहीं
दिखाते हैं, एक कृष्ण एक राधा,
गोपी है
हरे के साथ,
क्या है
श्री कृष्ण तो गोप है उसके साथ हरे कृष्ण, जो उसके जो दोस्त बताते हैं कहा भी, बाबा भी कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है तो तुम्हें इतना त्याग करना है। तो उस समय त्याग, जैसे कि बहुत हिंदी लोग थे तो बहुत ही फैशनेबल थे, बहुत ही उसको गहने वगैरह सब कुछ नौकर चाकर सब रहते थे, इतना त्याग कैसे करें? तो बाबा ने कहा अगर पीताम्बर धारी से आपको शादी करना है, पीताम्बर धारी के साथ रहना है, तो ये सब गहने सब फैशन सब छोड़ना पड़ेगा। तो एक सेकंड में धक से त्याग किया। तो त्याग का आधार भी क्या रही, श्रेष्ठ स्मृति। तो जितनी हमारी श्रेष्ठ स्मृति रहेगी उतनी ही हमारी स्थिति भी उतनी ही श्रेष्ठ रहेगी। तो जब हम ज्ञान में आए तो बाबा का जीवन देखा, बाबा इतने बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी, और जब त्याग किया तो एक सेकंड में त्याग किया। जो हीरे ये बाबा ने कहा तो हीरे क्या लगने लगे, पत्थर लगने लगे, कोयले लगने, सच्चे हीरे ज्ञान रत्न है, सच्चा परिवार यही है। जबकि बाबा ने अपने लौकिक बच्चों को भी कुछ नहीं दिया। अगर बाबा ने कहा अगर रहना है यहाँ रहना है, इस पुल में रहना है तो कुछ मिलेगा, तो सब आपका ही है, अगर यहाँ नहीं रहना है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो माना कितना बाबा का निश्चय था, तो निश्चय किस आधार पर रहा, श्रेष्ठ स्मृति। बाबा को इतना निश्चय था कि बच्चे मैं भविष्य में कल श्री कृष्ण छोटा विष्णु बनूंगा। बाबा ऐसे जैसे छोटे बच्चे चलते हैं वैसे बाबा एक्शन भी करते थे कि बच्चे मैं कल तो ये बनूंगा। माने कितनी श्रेष्ठ स्मृति, कितने जैसे कि निश्चय। तदा ही बाबा मुरली चलाते थे तो उस चित्र हमेशा चालू करके रहते थे, श्री कृष्ण की मूर्ति और लक्ष्मी नारायण। बाबा हमेशा कहते रहते थे कि बच्चे कल मैं ये बनूंगा, और इतना नशा इतना खुशी से कहते थे कि बाबा जैसे कि वो खगिया मारते थे, बाबा कहते थे खुशियों में खगिया मारो, तो वो बाबा का एक्शन, वो इतनी स्मृति, इतना लगन ऐसे था कि बस मैं बना की बना, जैसे मेरी ड्रेस है और खुट्टी में लगी हुई है, बस ये कल जाके पहनना है। और बाबा की बहुत समय से तैयारी थी कि बस अभी मुझे वो संपूर्ण फरिश्ता बनना है, जो संपूर्ण स्वरूप मेरा है वो ऊपर में है और नीचे मेरा ये साधारण स्वरूप है, मुझे वो बनना है। ऐसे वो कैलाश बहन थी गांधीनगर की, उसको बोला कि जाओ बच्ची देख क्या हो उसमें और मेरे में क्या अंतर है। तो बोला कि उसमें तो बहुत लाइट है, आप में तो लाइट नहीं है, तो बोला सभी बहने दादियां बोली अरे एक मुट्ठी क्या बोलती है, मुट्ठी माना उस समय जैसे कि वो मीठा बहुत प्यारा शब्द होता है लोगों का। तो कहता है कि नहीं नहीं बच्ची बहुत अच्छा बता रही है कि बाबा का जो संपूर्ण स्वरूप है ना वो है, और ये तो पुरुषार्थ है ना स्वरूप, वो बनना है मुझे, मुझे वो पुरुषार्थ करना है, मुझे वो बनना है। तो जब 18 जनवरी आने की तैयारी थी, कुछ समय बाकी था, फिर उसको बच्ची को बुलाया, तो बच्ची ने देखो उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो बोला जितना लाइट उसमें है ना उतना ही लाइट आप में है। तो माना जैसे कि बाबा ने कवर कर लिया पुरुषार्थ से, दिन रात बाबा इस लगन में उस पुरुषार्थ में लगे रहते थे। तो हमें बाबा से प्रेरणा मिलती है, बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना त्याग किया, ब्रह्मा बाबा ने कितनी तपस्या की और ब्रह्मा बाबा ने कितनी सेवाएं की। आज दादियां भी इतनी उम्र में भी एक सेकंड भी ऐसे कि व्यर्थ न जाए, इतना अटेंशन रहता है, सेवा में लगे। जगदीश भाई थे देखा हमने, और सेवा का भी चांस मिला उसका। तो अमृत वेले 2 बजे से पहले स्नान पानी करके तैयार हो जाते थे। बाबा कहते थे बच्चे जगदीश बच्चा क्या देखो उसकी लाइट जल रही है। तो बोला कि 2 बजे पहले ही मैं स्नान पानी करके तैयार बैठता था, बाबा बुलाए। तो कैसे बाबा के साथ रूरियान होती थी, माना कितनी लगन थी आत्मा के अंदर। तो जैसे कि एक समय का कितना महत्व है, वो समय का महत्व अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर रहता है। तो भविष्य का भी नशा कब रहेगा, जब हमारी स्मृति इतनी श्रेष्ठ रहे। तो स्मृति श्रेष्ठ है तो हमारे जीवन भी समर्थ बनेगा। तो स्मृति का जितना जीवन में अभ्यास, इतनी प्रैक्टिस रहेगी। तो बाबा ने कहा तीन बिंदी कौन सी है, एक तो मैं आत्मा, दूसरा बाप, तीसरा ड्रामा। जब पहला स्टेप है आत्मा का हो जितना पक्का हो जाएगा, उतना ही फिर बाप किया, उतनी ही फिर ड्रामा किया। ड्रामा कैसे एक्यूरेट है, ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है, हमारा निश्चय कैसे बढ़ेगा ड्रामा के अंदर। बाबा कहते हैं जो होना है, जैसे दादी कहते ना जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो माना कितना श्रेष्ठ स्मृति, कितनी श्रेष्ठ स्थिति है कि जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। क्यों बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। तो जितना हम ड्रामा की सीन को कल्याणकारी समझेंगे उतना ही हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी। परिस्थिति तो आती है, परिस्थिति तो आएगी, लेकिन परिस्थिति के समय हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहे। कैसे श्रेष्ठ रहेगी, जब हमारी स्मृति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां भी कम हो जाएगी, या तो जैसे बाबा कहते हैं मक्खन से बाल निकल जाएगा, वैसे ही हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी। ओम शांति।
आपको जब परिस्थिति आई थी, आपने ट्रक चलाया था, तो स्थिति कैसी रही थी आपकी, वो कैसे चलाया था वो बता दो।
उस समय तो ऐसा था ना कि जैसे वो आम का ट्रक आया था, तो दादी जी ने कहा कि जाओ आम उतारना है, तो हम तो चले गए। तो हमने सब कहा कि भाई इतना दूर है, वहां से सबको ले जाने ले आने में तकलीफ होगी, तो थोड़ा सा आगे कर दे।
आता नहीं चलाने,
पहले चलाना आता था
थोड़ा सा, तो क्या हुआ फिर थोड़ा सा आगे किया, तो किया हुआ तो सही, लेकिन वो स्टार्ट हो गया तो 2-3 गाड़ियों का भी नुकसान हो गया। लेकिन समझ एक बाबा निश्चय रहा कि बाबा एक बाबा याद आ रहे हैं, तो हम तो कुछ ऐसा नहीं कहा। मेरे भाई ने बोला भाई काका क्या हुआ, छोटे बच्चे को काका बोलते हैं भाई। कि मैं कोई बात नहीं, रमेश भाई की गाड़ी थी वो भी टूट गई। रमेश भाई ने बोला भाई आपने किया था, मैं बोला हाँ।
आपको कुछ नुकसान नहीं है?
नहीं, ट्रक फिर अपने स्टार्ट हो गया क्या? एकदम धक्का लगा क्या? लग के आपको कंट्रोल करने
कहाँ तक ट्रक
बड़ा ट्रक था
कहाँ?
झुपड़ी के पास, झुपड़ी के पास दूध भंडारे के पास था,
तो फिर
वहां से खाली करके और स्टोर में रखना था, तो दूर बाबा झुपड़ी के पास था वो थोड़ा आगे करके थोड़ा थोड़ा और सब कुछ सहज हो जाएगा, और थोड़ा क्लच दबाएंगे तो थोड़ा आगे हो जाएगा, फिर अपना बंद हो जाएगा, फिर सब कुछ चालू नहीं होगा। गाड़ी को जैसे क्लच दबाते हैं तो थोड़ा धीरे से अपना आगे हो जाती, फिर चालू नहीं होती, लेकिन चालू हो गई।
चालू कैसे हो गई?
फिर ब्रेक का ध्यान रहना, एक्सीलेटर का ध्यान रहना, फिर तो आगे सीढ़ी थी तो सीढ़ी भी टूट गई, बच गए, बाबा ने बचा लिया।
ट्रक मारने के बाद जब हो गया काम पूरा, तो आप फिर वहां से उतर के चले गए कि वहीं रहे?
नहीं, वहां पे हम आम उतारने लगे।
सेवा जारी।
दादी ने कुछ नहीं बोला, फिर मैं बोला चलो क्लास में जाता हूँ, दादी बुलाए फिर हम जाए, इसे तो अच्छा पहले क्लास में जाना चाहिए। तो देखो इसको शर्म भी नहीं है।
कितनी गाड़ी?
तीन चार गाड़ी का।
ये ड्रामा में बिचली तो नहीं हुई, बाकी सब बिचली तो हो गई है।
मुस्कुराहट और सेवा जारी है।
जो होता है कल्याणकारी होता है।
उसमें कल्याण था, अगर वो गाड़ी में वो जाते हो सकता है कहीं और ज्यादा नुकसान हो जाता, तो वही नुकसान हुआ।
बच गए, कुछ किसी का नुकसान नहीं हुआ गाड़ी का, वो तो कोई बात नहीं। बाबा ने दादी ने कुछ नहीं बोला, फिर क्लास में गए सब कुछ हुआ, कुछ नहीं बोला। तो हमने बोला अभी इसमें क्या करना चाहिए, बस एक बार एक भरोसा। जब बाबा को जीवन दिया है तो अपनी स्थिति को क्यों हलचल मिला गए? बाबा ही करण करावाना है, बाबा ने हमको नियमित बनाया है कोई भी कार्य के लिए, तो हमको ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमने कुछ शुभ भाव से किया है तो इसे कुछ बोला नहीं, मेरे बहन ने भी नहीं बोला, दादी ने तो कुछ भी नहीं बोला। तो ये भी बाबा कहते हैं ना, परीक्षा आती है तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है तो पास हो जाते हैं।
नहीं,
कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, और कहा ठीक है नींद आई।
अच्छा, उसके बाद भी फिर कभी ट्रक चलाया?
नहीं, बाद में तो नहीं दिखा
कभी कोई और नुकसान हो रहा
है? ज्ञान का, ज्ञान में कैसे
है? ज्ञान में कैसे है? आपका बिजनेस भी क्या था?
ज्ञान में तो जैसे हम 1970 में सूरत में गया था, पहले बहुत भक्ति करता था, तो भगवान को ढूंढ ही रहा था।
1970
तो उस समय एक दोस्त था, भाई था, वो डायमंड का काम करता था, उसके पास गया तो एक बाबा की ज्ञान की किताब देखी, उसमें लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण का फोटो देखा, तो भक्ति का बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं बोला ये किताब कहाँ मिलती है? तो भाई ने वहां सेंटर गाइडेंस दिया, तो वहां गया मैं शाम को। तो
कौन सी जगह?
सूरत में, सूरत। तो फिर जैसे ही गया तो बोला कि आपको आपको थोड़ा समझाया, बोला कल से आओ, कल आपको आत्मा के बारे में समझाएंगे। तो जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया, बहुत खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता, बहुत लगन होती थी, और समझ में इतना नहीं आता था, लेकिन ऐसा लगता था टाइम पर भाग भाग के जा रहे थे, थोड़ा नजदीक था, दूर नहीं था इतना। फिर बाद में तो परीक्षा थोड़ी आती गई, लेकिन लगन बढ़ती गई कि बस अभी तो इतना साल हो गया, बाबा भी अव्यक्त हो गया, अभी हमें तो बहुत प्रसाद करना है। बहुत लगन होती थी, बाबा ने अपना जीवन तो बना दिया सफल, अभी बाबा को भी इतना बचे थे, परिवार था हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमको तो और ही कुछ करना चाहिए, बस हमारे दो बड़े भाई छोटे भाई सब है, बस हमें बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए, ऐसा लगन रखती थी। फिर यहाँ मधुबन में आए 75 में, देखा सब, फिर बस लक्ष्य रख दिया इधर आ जाना है। फिर आए 76 से इधर परमानेंट सेवा में। ओम शांति।
कौन सी सेवा
है?
कौन सी सेवा?
सेवा किचन में सेवा, फिर उसमें तो सब सेवा करते रहे, कोई भी सेवा देते थे, धोबी घाट कपड़ा छटने का, वो दादी जी ने बोला आप करेंगे, उन्होंने हाँ बहुत अच्छा, दादी मैंने बोला तो हम कैसे मना करेंगे, और कोई भी सेवा होती थी तो दादी कहती थी तो हम करते, कोई भी मेहमान आते थे तो बोले दादी कहती इसका ध्यान रखो, तो अच्छा बड़ी बहने आती थी, लोगों सवेरे चाय पानी देना सब करते। ओम शांति।
सेवा तो बहुत है, बहुतों को आगे तक पहुंचा देते।
ओम शांति।
ओम शांति।
एक है निस्वार्थ सेवा, एक होती है सशर्त सेवा, शर्त के साथ सेवा। संसार में इस तरह की सेवाएं होती है, इस संसार में बहुत सारे समाज सेवी हुए हैं, कई अन्य धर्म की आत्माएं हुई हैं, उन्होंने सेवाएं की, परंतु उनकी जो सेवाएं होती थी उसमें कुछ शर्तें होती थी, जैसे आप हमारे धर्म में आ जाओ फिर उसके बाद में उनकी सेवाएं की जाती थी, उसे कहा जाता है सशर्त सेवा, होती है निस्वार्थ सेवा। तो मरीजों की जो सेवा है, पेशेंट्स की जो सेवा है, वो निस्वार्थ सेवा की कैटेगरी में आती है। वहां जो ब्राह्मणों को, हर ब्राह्मण को ये इच्छा होती है कि हम जो सेवा करें उसका परिणाम ये हो कि जिसकी सेवा कर रहे वो बाबा का बन जाए, ये तो बहुत अच्छी भावना है, परंतु इसके पीछे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है केवल हम इतना ही लक्ष्य रखते कि ये बीके बन जाए, उसके भी ऊपर एक सेवा है कि चाहे कोई बीके हो या बीके ना हो, बीके बने या बीके ना बने, बाबा का बच्चा हो बाबा का बच्चा ना हो, उस रीति से, परंतु सभी की सेवा करना है बिना कोई स्वार्थ के, कामना के। बहुत सूक्ष्म समझने की बात है। तो हमने देखा है कि चिमन भाई की सेवा भी ऐसी ही, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के, यज्ञ में निस्वार्थ सेवा का एक बेजोड़ उदाहरण चिमन भाई। जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है, चाहे कोई भी हो, हमने उनको देखा है कि चिमन भाई बराबर वहां पहुंच जाते हैं, उनको पता कहां से चलता है वो पता नहीं चलता, पर वहां जाते हैं बराबर। अपनी से ज्ञान और योग का आवश्यकता अनुसार त्याग करके भी असमय किसी आत्मा की जरूरत अनुसार सेवा करना, ये बहुत बड़ी सेवा है, और उसके पीछे कोई ये भाव भी नहीं है कि ये बीके है या नहीं है। कई बार तो केवल गेस्ट होते हैं, अभी हॉस्पिटल में कोई गेस्ट है और वो बीमार पड़ गया, और उसकी सेवा करने के लिए हमें अपना ज्ञान और योग त्याग कर उस समय में वहां उपस्थित रहना, ये बहुत बड़ी सेवा, और ये भी भाव नहीं है कि वो बीके बने न बने। तो ये जो सबके प्रति ये भाव रहना कि सब बाबा के बन जाए तो सर्वश्रेष्ठ कामना है, परंतु वो है या नहीं है फिर भी उनकी सेवा करना, ये बहुत श्रेष्ठ भाव है। तो निस्वार्थ सेवा, समाज सेवा जो संसार में जिसका गायन है, वो शायद आपने ही द्वापर युग से चालू की होगी। किसी भी पेशेंट्स को देखना, उनको मिलने आना, ऐसे कुछ मरीज है जो अभी भी हॉस्पिटल में है, जो यज्ञ के बहुत अनन्य है और बहुत पुराने हैं और बुजुर्ग है, जिनको देखने ही शायद कोई उनके लौकिक भी नहीं आते और कोई नहीं आते, उनको देखने चिमन भाई पहुंच जाते हैं। ऐसी कुछ माता है जो पुरानी है, उनको मिलने वो आ जाते हैं, तो उनको मिलने आना, उनको टिफिन पहुंचाना और कोई सामग्री पहुंचाना, या किसी विशिष्ट कार्य के लिए किसी मरीज को कहीं और ले जाना, किसी और स्थान पर कुछ जांच करने के लिए, इस सब के लिए यहां से जाना, उनके साथ घूमना फिरना, उनका सब कुछ करना, ये बहुत त्याग समाया हुआ है इन सेवाओं में। तो तो ये जो निस्वार्थ सेवा इसको कहा जाता है, इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है। एक तो है ज्ञान देने की सेवा जो सब करते हैं, दूसरी है यथाशक्ति मनसा से शक्तियां देना, वो कई लोग करते हैं, कई ब्राह्मण करते हैं। एक है गुणों की सेवा, कर्मों द्वारा गुण, तो ये कर्म के द्वारा निस्वार्थता का दान, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। एक तो ये बात, और दूसरी जैसे उन्होंने बड़ी निर्मलता से अपना जो अनुभव सुनाया, जिसमें सरलता का गुण झलकता है, सरल स्वभाव छुवत चलना ही, ये जो रामचरित मानस में लिखा है, इनके जीवन में वो चरितार्थ होता है। तो सरलता और निस्वार्थ सेवा आत्मा को बहुत ऊंचा उठा देती है। तो ये दोनों ही गुण हम सभी ने आप में देखे हैं। और बाबा ने जैसे कहा आज तीन बिंदियों की बात, जितनी स्मृति श्रेष्ठ है तो आत्मा में समर्थी आती है, त्याग भी स्वतः ही हो जाता है। तो पहला आत्मिक स्मृति, बाप की स्मृति, और तीसरा ड्रामा की स्मृति। अगर ड्रामा की स्मृति है तो हम अचल अडोल रहेंगे। तो 24 घंटे में ड्रामा की जितनी भी पॉइंट्स है उसको कम से कम एक या दो बार मन ही मन में रिवाइज करनी है, चाहे बाबा के सामने करो या चलते फिरते करो। जैसे कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा कल्याणकारी है, इस ड्रामा में जो हो रहा है उसमें कल्याण ही है, जो कुछ हो रहा है वह सत्य है, ड्रामा बदल नहीं सकता। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, ड्रामा परिवर्तनशील है और अपरिवर्तन भी है, मतलब अपरिवर्तनशील भी है। ड्रामा फिक्स्ड है कृति से और उसमें हर समय परिवर्तन भी हो रहा है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा बहुत सुंदर है। ड्रामा भगवान को पसंद है तो हमें भी पसंद आना चाहिए। यहाँ पे हर एक्टर कैसा है, संपूर्ण निर्दोष, केवल निर्दोष नहीं संपूर्ण निर्दोष। तो हमारे दिन भर में दिनचर्या में एक साक्षी भाव भी रहेगा कि जब हम इस नित्य में स्थित होते, ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करने का प्रयास करते। ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा न्यायपूर्ण है। इस ड्रामा में किसी के साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता, ऐसा ये ड्रामा है। तो ये ऐसी चिंतन कर करके हम और बहुत सारी पॉइंट्स जो बाबा ने अब तक सुनाई है उनको दिन में कम से कम एक बार या दो बार कहीं बैठ कर सारी पॉइंट्स रिवाइज करना मन ही मन में, तो ये एक सूक्ष्म अभ्यास हमको करना है। अच्छा, ओम शांति।
कल किसे?
कल देवेंद्र भाई।
सचिव एक बार बाबा ने प्रदान नहीं दिया था आपको, वो सुना दो, बाबा ने प्रदान कैसे दिया?
तो यहाँ मधुन वालों को बाबा मिले थे, तो बाबा ने सब मधुन वाले मिले, भाई मिले थे, सिर्फ बहने को बाबा ने बोला बहनों का टर्न फिर करेंगे, फिर अभी आज तक आया नहीं बहनों का टर्न। तो बाबा ने कहा कि आप सुखदेव हो, बाबा ने ये तो कहा लेकिन सबको तुम देते हो और सबको राजी करते हो, खुश करते हो, तो सेवा का राज समझ गए। अगर सेवा के राज को जो नहीं जानते हैं वो नाराज होते हैं, और जो राज को जानते हैं वो नाराज नहीं होते हैं। तो सेवा का राज क्या है? तो सेवा का राज तो बहुत बड़ा है कि हमारा भविष्य कितना श्रेष्ठ है, और हम समझते हैं सेवा कर रहे किसकी कर रहे, कितना उच्च ब्राह्मण कुल भूषण है, कितनी महान आत्मा है। जैसे दादी ने भाई जो दादा थे, अर्जुन दादा थे, ये यज्ञ में साथ में आए थे, तो बड़ी दीदी थी उसके रिलेशन में थे, उसकी माँ और दीदी दोनों देवरानी जेठानी, तो दीदी चाची लग रही थी। तो हमारे कमरे में रहते थे, और ऐसे भी लगता था कि जो भी बाबा के बच्चे हैं, इतना श्रेष्ठ परिवार है और इतना बाबा की सेवा में इतना साल गुजारा है, तो कितना उसका भाग्य है। अगर हम उसकी सेवा करेंगे तो कुछ तो परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा। और दादी ने खास मुझे कहा है बेटे की थले पर बाहर, तो बोला आप जो सेवा करते हैं उससे बहुत दिल से दुआएं निकलती है। तो मैंने कहा देखो बाबा के दादी को बनाया है, और दादी ने कहा, तो कहीं ने बोला तुम ये सेवा क्यों करते हो? तो मैं बोला नहीं, तो अंदर से रहता था कि नहीं, दादी ने कहा, मैंने बाबा ने कहा, और इतना इतने साल जो यज्ञ में सेवा किया है उस आत्मा का कितना भाग्य है और कितना त्याग है उसका, इतना उसको समझ नहीं आती थी, लेकिन कितनी बड़ी समझ कि लौकिक में नहीं रहना, बाबा के पास रहना, सब कुछ छोड़ करके आज वो बाबा के पास था। लौकिक में उसकी बहन भी थी और भाई भी था, उसके नाम पे मकान भी था। उसका भाई यहाँ आकर के बड़ी दीदी ने प्रधान श्लोक भाई को बोला था कि देखना इसको साइन नहीं कर रहे, मुठा नहीं ले ले, क्योंकि तो उसके नाम का मकान था, तो कैसे भी करके उसने लेके
बोला वाला था ना अर्जुन भाई।
लेकिन वो इतना एक्यूरेट था सेवा में, हर एक प्रकार, सूरज भाई कहते थे चाय बनाते थे ना तो पानी गर्म करना, चूल्हा तैयार रखना, फिर सूरज भाई को बुलाना, चलो तैयार है पानी गर्म है चाय बनाओ। माना एक्यूरेट कहते, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। दादी दीदी भोजन करते थे तो भोजन दादी दीदी जब तक नहीं करेंगे तब तक वो भोजन नहीं करते थे, इतना ही माना सबके बड़ों के प्रति भी रिस्पेक्ट रिगार्ड था और हर एक प्रकार की सेवा करते थे।
आपने बाबा को क्या पूछा था?
हाँ बाबा ने कहा था, बाबा ने ये फिर कहा कि बाप से प्यार है, परिवार से भी प्यार है, अभी किसने प्यार रखना है? तो मैं बड़ा योग में, तो मोहिनी बहन बड़ा भी सेवादार सारा दिन करता है, फिर योग में नींद आ जाती है उसको। तो बाबा ने कहा नहीं, बाप से भी प्यार है, परिवार से भी प्यार है, अभी पढ़ाई से प्यार रखना है। तो चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स होगा तो पास भी ऑनर होंगे, नहीं तो सिर्फ पास होंगे। तो पुरुषार्थ तो करता हूँ, ज्ञान का लक्ष्य रखता हूँ ज्यादा, लेकिन इतना नहीं है अभी, फिर और ज्यादा रखेंगे ऐसा।